हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उसके बाद मन में काफी कुछ सोचते हुए उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसे अंदर बेड पर लेटी हुई सुनैना दिखी। उसके हाथ में प्लास्टर बंधा था, पैर में भी कुछ बैंडेज लगे थे और माथे पर भी बैंडेज किया हुआ था। सुनैना को इस हालत में देखकर आदित्य के दिल में बहुत ज्यादा दर्द उठा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अपना चेहरा दूसरी तरफ करके उसने अपने आंसू सुनैना से छिपा लिए। दरवाजे के खुलने की आहट पाकर सुनैना भी दरवाजे की तरफ देखी। उसे भी सामने खड़ा आदित्य दिखाई दिया। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि सच में उसके सामने आदित्य ही है। इस बात पर वो मन में खुद से बातें करती हुई सोचती रही, क्या सच में आदि ही है सामने, या फिर मेरे सिर पर कुछ ज्यादा ही गहरी चोट लग गई है। मुझे कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर रही हूँ, जो नहीं है वो भी नजर आ रहा है। ना यकीनी से आदित्य की तरफ घूर घूर कर देखती हुई सुनैना अपने मन में ये सब कुछ सोच रही थी। उसे इस तरह अपनी तरफ देखता हुआ पाकर आदित्य हल्का सा मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। क्या है, अब इस तरह आंखें फोड़कर क्या देख रही हो? मेमोरी लॉस तो नहीं हो गया ना सिर पर चोट लगने की वजह से कि पहचान ही नहीं पा रही हो मुझे? सुनैना को इस तरह अपनी तरफ देखता हुआ पाकर आदित्य अपनी हमेशा वाली रूखी और सर्द आवाज में बोला, इसका मतलब तुम सच में यहाँ पर हो, लेकिन तुम वापस कब आए और तुम्हें पता कैसे चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं कहाँ पर हूँ? आदित्य के इस तरह सवाल करने पर सुनैना ने उसके सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उससे एक के बाद एक सवाल करने लगी। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है, बिना यहाँ पर तुम्हारे सामने आए ही तुम्हें नजर आ रहा हूँ क्या मैं? वैसे और कितनी बार नजर आया हूँ मैं तुम्हें इतने दिनों में? सुनैना के इस तरह बोलने पर आदित्य जानबूझकर बात बदलता हुआ उससे सवाल किया, क्योंकि वो उसे ये बताना नहीं चाहता था कि उसे कैसे पता चला सुनैना के और उसके एक्सीडेंट के बारे में। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतने दिनों में ना एक बार भी कॉल किया और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई। आदित्य के इस तरह पूछने पर सुनैना मुंह फुलाकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दूसरी तरफ अपना चेहरा करके बोली, अच्छा ये बताओ एक्सीडेंट कैसे हुआ तुम्हारा? आदित्य ने अब एकदम सीरियस होते हुए सुनैना से सवाल किया, लेकिन सुनैना पहले ही उससे नाराज थी और उसके इस तरह के सवाल पर वो और ही ज्यादा खिली और उसी तरह गुस्से में बोली, तुम्हें नहीं पता है एक्सीडेंट कैसे होता है? आदित्य उसके इस तरह से बोलने पर समझ गया कि सुनैना सच में इस वक्त उससे काफी ज्यादा गुस्सा है और उसकी किसी भी बात का सीधी तरह कोई जवाब नहीं देगी। इसलिए आदित्य ने एक गहरी सांस भरी और चुपचाप उस वक्त उसके रूम से बाहर आ गया। सुनैना के हॉस्पिटल रूम से बाहर आने के बाद आदित्य डॉक्टर से सुनैना को घर ले जाने के बारे में बात करने लगा। डॉक्टर ने भी आदित्य को परमिशन दे दी, क्योंकि सुनैना की कोई भी चोट इतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी। फिर आदित्य ने उन्हें घर पर उसका अच्छी तरह से ख्याल रखने का यकीन दिलाया। डॉक्टर ने भी कुछ ही देर में सुनैना के डिस्चार्ज पेपर तैयार कर दिए। आदित्य अपने साथ कार में सुनैना को लेकर अपने घर आ गया। कार उसका ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और आदित्य सुनैना के साथ कार में पीछे बैठा हुआ था, लेकिन सुनैना कार की खिड़की से बाहर देख रही थी और उसने आदित्य से बात करना तो दूर पूरे रास्ते में एक बार भी आदित्य की तरफ नहीं देखा। आदित्य ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। वो इतने दिनों से शहर से और सुनैना से दूर जरूर था, लेकिन सुनैना पर उसके आदमी हमेशा ही नजर रखे हुए थे कि वो किसी तरह की कोई मुसीबत में ना पड़ जाए। इसी वजह से उसे सुनैना की पल पल की खबर थी और वो सामने से फोन करके उसे कोई उम्मीद या कोई गलतफहमी नहीं देना चाहता था। इसीलिए जैसे ही सुनैना के एक्सीडेंट के बारे में पता चला, वो तुरंत हॉस्पिटल आ गया था, सुनैना के होश में आने से पहले ही। और अभी घर आने से पहले ही उसने सुनैना के भाई और बहन नैना को भी फोन करके सुनैना के एक्सीडेंट के बारे में बता दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि सुनैना का एक्सीडेंट हुआ है और उसके घर में वो किसी न किसी को ये बात बताना जरूरी ही है, नहीं तो सब लोग बाद में कहीं इन सब के लिए आदित्य को ही जिम्मेदार न समझ लें। और उसे लगा था कि अपने भाई बहनों से मिलकर सुनैना भी थोड़ी खुश हो जाएगी। तभी आदित्य का घर आ गया और ड्राइवर ने कार रोक दी। कार रुकते ही सुनैना अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकलने लगी। उसके पैर में भी थोड़ी सी चोट लगी हुई थी और वो पूरी तरह ठीक से चल नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी वो आदित्य से काफी नाराज थी और इसलिए उसकी कोई मदद नहीं लेना चाहती थी। इसलिए सुनैना अकेले ही कार से निकलकर थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए घर के अंदर की तरफ ही बढ़ने लगी। आदित्य ने सुनैना को इस तरह से चलते हुए देखा तो कार के दूसरी तरफ से निकलकर जल्दी से सुनैना का हाथ और कंधा पकड़कर उसे अपने हाथों का सहारा देते हुए थाम लिया और बोला, क्या कर रही हो, चोट लगी है, थोड़ा ध्यान देकर चलो। मैं ठीक हूँ, बोलते हुए सुनैना आदित्य को अपना हाथ दिखाती है और उसी तरह से लड़खड़ाते हुए घर के अंदर की तरफ जाने लगती है। पैर पर ज्यादा जोर पड़ने की वजह से बैंडेज के ऊपर से ही ब्लड नजर आने लगता है। आदित्य ये देखकर मायूसी से अपना सिर हिलाता है और आगे आकर सुनैना को जबरदस्ती अपनी बाहों में उठा लेता है और लेकर घर के अंदर की तरफ ही चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि सीधी तरह से बोलने पर तो सुनैना उसकी हेल्प लेगी नहीं। सुनैना को चलने में काफी तकलीफ होती है, लेकिन वो गुस्से में होने की वजह से आदित्य से मदद नहीं लेना चाहती, इसलिए अकेले ही कार से बाहर निकलकर घर के अंदर की तरफ जाने लगती है। इसलिए उसके पैर पर लगी चोट पर बॉडी वेट पड़ने की वजह से खून निकलने लगता है और बैंडेज के ऊपर से ही थोड़ा ब्लड नजर आने लगता है। सुनैना को पैर में चोट वाली जगह पर थोड़ी तकलीफ भी होती है, लेकिन उसे बर्दाश्त करती हुई वो घर के अंदर की तरफ बढ़ती है। लेकिन आदित्य से सुनैना की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो जल्दी से सुनैना के करीब आकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे उसकी गोद में लेकर घर के अंदर की तरफ जाने लगता है। ये क्या कर रहे हो तुम आदि, उतारो मुझे, मुझे नीचे उतारो। आदित्य के इस तरह अचानक से उसे गोद में उठा लेने पर सुनैना उसकी बाहों में कसमसाती हुई और नीचे उतरने की जिद करते हुए बोलती है, तो आदित्य उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और उसी तरह बाहों में उठाए हुए उसे घर के अंदर आकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। उसे गोद में लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके हिलने डुलने की वजह से आदित्य हल्का सा लड़खड़ा जाता है, तो सुनैना डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और घबरा कर आदित्य की शर्ट का कॉलर कसकर अपने हाथ से पकड़ लेती है। सुनैना को इस तरह करते देख आदित्य उसके चेहरे की तरफ देख हल्का सा मुस्कुराता है। जब सुनैना की आंखें बंद होती हैं तब और फिर धीमी आवाज में अपना चेहरा उसके चेहरे के पास करते हुए काफी संजीदगी से बोलता है, डोंट वरी, मैं हूं ना, संभाल लूंगा, गिरने नहीं दूंगा तुम्हें और ना ही कभी कुछ होने। उसकी ये बात सुनकर सुनैना में पहले तो मन ही मन काफी खुश हो जाती है और हल्का सा मुस्कुराने लगती है, लेकिन तभी आदित्य के इस तरह बोलने पर जब उसे आदित्य के मुंह से शराब की स्मेल आती है तो सुनैना भी वापस रियलिटी में आती है और उसका फिर से मुंह बन जाता है। वो गुस्से में आदित्य की बात का जवाब देती हुई बोलती है, पहले खुद को तो संभाल लो, फिर संभालना मुझे, हर वक्त नशे में रहते हो और वजह पूछो तो कभी बताते भी नहीं हो, तो कैसे विश्वास करूं मैं तुम पर और कब तक। सुनैना की ये बात सुनकर आदित्य हैरान होकर उसकी तरफ देखता रह जाता है। अब तक आदित्य उसे लेकर अपने कमरे में पहुंच चुका होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो सुनैना की बात का क्या जवाब दे, क्योंकि उसने सच में ड्रिंक तो की होती है उस वक्त। इसलिए चुपचाप वो सुनैना को बेड पर लिटा देता है और उससे थोड़ा दूर आकर खड़ा हो जाता है। बस बोलती बंद हो गई, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं हूँ, संभाल लूंगा और ये वो, लेकिन जैसे ही सच से सामना हुआ तो नजरें फेर कर खड़े हो गए हमेशा की तरह। रहने दो तुमसे मुझे कोई और उम्मीद भी नहीं है। आदित्य के इस तरह घूमकर दूसरी तरफ चेहरा करके खड़े हो जाने पर सुनैना भी उसे ताना मारते हुए बोलती है और तंजिया लहजे में बोलती हुई हल्का सा मुस्कुराती हुई बेड पर उठकर टेक लगाकर बैठ जाती है। क्रमशः